الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے دوستو پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں آج کچھ بات کرتے ہیں کہ رات کو زندگی بھر ہم سوتے رہتے ہیں تو سونے سے پہلے کیا اعمال کرنے چاہیے اس پر بات کرتے ہیں سونے کے وقت معمولات کیا ہونے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک دو سورت کو نہیں پڑھ لیتے تھے کون سی دو سورت ہے سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں ہے اور سورہ ملک ہر رات پڑھتے تھے ہر رات میں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے مسند ابو دیالہ کی بھی حدیث ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام told us حکم دیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نہ سوؤں رات میں جب تک کہ یہ دو سورت نہ پڑھ لو گویا اللہ کا حکم یہ روایت بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الدرر منصور میں نقل کی ہے کنز العمال کی بھی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی سورت ہے اس کو پڑھے بغیر تو سونا ہی نہیں چاہیے بلکہ اگر تمہیں منہ پر ہو ازبر ہو تو پھر تین رکعت وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اس میں پڑھ لو کم سے کم تبارک پڑھ لو پہلے رکو پہلی رکعت میں پہلا رکو دوسری رکعت میں دوسرا رکو یا پھر وتر کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے اس میں پڑھ لو لیکن پڑھنا ضرور ہے یہ کام آئے گی قبر میں قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا یہ صورت کام آئے گی مشکات شریف کی ایک حدیث سنا دو آپ کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن شریف میں there is one surah in the قرآن کریم جس میں کتنی آیت ہے 30 آیت ہے 30 آیت ہے وہ سورت قیامت میں پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت میں سفارش کرے گی دا سورہ از گوئنگ ٹو میک انٹرسیڈ فور دا ریسائٹر یہاں تک کہ اس سورت کی سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک 30 آیات دو منٹ تین منٹ لگتی لیکن اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع من عذاب القبر دا سورہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے سورہ تبارک الذی 30 آیت سونے سے پہلے روزانہ तो कब्र के अजाब से उसको प्रोटेक्शन करेगी, प्रिवेंट करेगी, बचाएगी ये सूरत। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही उसे माने कहते थे, माने के माना है रोकने वाली अजाब को। इसलिए एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र के फरिश्ते, ये रिवायत भी है, एक आदमी का इंतकाल हुआ तो कब्र में अजाब वाले फरिश्ते आए उसके सर की तरफ से, सो कहा उसे अजाब देने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं, देयर इज नो वे टू पनिशिंग हिम, बिकॉज ये रोजाना क्या पढ़ता था, सूरह मुल्क पढ़ता था, गोया इसने फरिश्तों को भी रोक दिया। इसीलिए दारमी की रिवायत है, खालिद बिन मादाद रज़ी अल्लाहु ताला नरेस फरमाते हैं ये सूरत, जो आदमी इस सूरत को पढ़ता है ये सूरत उसकी तरफ से आर्ग्यूमन करेगी, झगड़ा करेगी, किसके साथ, अल्लाह के साथ, कहेगी अगर तेरी किताब में से हूं तो मेरी सिफारिश कबूल कर वरना मुझे किताब से निकाल दे, टेक मी आउट फ्रॉम योर कुरान, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि इस सूरत से कब्र का अजाब नहीं होगा। इसीलिए मिश्कात शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कई साल मैंने पढ़ाया मिश्कात शरीफ, हदीस की किताब बहुत अच्छी है, अच्छा निदाउन में पढ़ाई जाती है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, बास सहाबे किराम ने दे पुट अ टेंट, एक जगह जंगल में जाते हैं ना तो एक जगह पर खेमा लगाया, टेंट लगाया, और उनको इलम नहीं था कि यहां कब्र है, एंड दे डोंट नो देयर इज अ कब्र हियर, बास बता कब्र वो पानी की वजह से बैठ जाती है पता नहीं चलता है। सो अभी एक टेंट लगाया रात में सोने की तैयारी, उन्होंने सुना कि कोई नीचे से सूरह तबारक पढ़ रहा है, Someone's reciting सूरह तबारक, यानी कोई कब्र है उसमें कोई सूरह तबारक पढ़ रहा है। सो सहाबा किराम ने when they came back to मदीना मुनव्वरा, जब वापस आए तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सप्लेन किया कि हजरत ये तो हमने ऐसा सुना कि कोई सूरह तबारक नीचे पढ़ रहा था कब्र के अंदर में, फरमाया हाँ तुम्हें पता नहीं ये सूरत अल्लाह के अजाब से रोकने वाली है और बंदे को कब्र में नजात देने वाली है, हम कहा पाबंदी करते इसकी, जब अल्लाह के नबी इसको रोजाना पढ़ते थे इसको पढ़नी चाहिए, थोड़ी बात आ रही है। दूसरी सूरह जुमर और सूरह बनी इसराइल, थोड़ी लंबी है, सूरह जुमर और सूरह बनी इसराइल ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पढ़कर सोते थे, सूरह जुमर और साथ साथ में मुसब्बहात, मुसब्बहात वो दो वो सूरते हैं जिसके शुरू में सब्बह लिल्लाह सब्बह लिल्लाह सब्बह लिल्लाह, जैसे बात सूरत जिसको हवामीम कहते हैं, हामीम हामीम बिगेन विद द हामीम, बात सूरत बिगेन विद द सब्बहा उसको कहते हैं मुसब्बहात। सो अरबाज इब्न सारिया रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब तक के मुसब्बहात की तिलावत नहीं करते हैं, कितनी आयत है सब मिलाकर 1000 आयत से अफजल, कह रहे हैं मुसब्बहात की तिलावत करना, जितनी सूरतों के शुरू में सब्बा पूरी सूरत सूरत पढ़ना छोटी छोटी है सूरतें आखिर में, उसको पढ़ने से उसमें से एक आयत 1000 रकात पढ़ने के बराबर है, एक आयत 1000 रकात। हाँ तो ये है ना पूरी सूरतें हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सही हदीस है, तिर्मिज़ी शरीफ में भी है, उसकी एक आयत पढ़ लो गोया आपने 1000 आयत पढ़ ली। मुसब्बहात, अब मुसब्बहात मैंने बतलाया जिनकी इब्तिदा सब्बह से होती है, बिगिन विद द सब्बह या युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति। ये है वो कहां पर है, वो करीबन 6 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 6 सूरत है। एक तो सूरह हदीद और एक है सूरह हश्र और सूरह सफ, जो हम फजर में पढ़ते हैं, युसब्बिहु लिल्लाह सूरह सफ, और सूरह जुमा है, सूरह तगाबुन है, और सूरह आला सब्बिहिस्म रब्बिकल। ये 6 सूरत है। और कह रहे हैं इरबाज इब्ने सारिया की जो रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते नहीं थे। नहीं, ये बात हदीस में थोड़ी गड़बड़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते न थे जब तक के मुसब्बहात यानी वो सूरतें हैं जिसमें शुरू होता है सब्बह से, वो पढ़े बगैर सोते नहीं थे। और हदीस में है वफी ही आयतुन, इस सूरत में एक आयत है, एक इस सूरतों में एक आयत है जो 1000 आयत के बराबर है। वो कौन सी आयत है पता है? नहीं। वो है सूरे हश्र की आखिरी आयत, सूरे हश्र की आखिरी आयत है। वो कौन सी है? सूरे हश्र की हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमान रहीम हुवल्लाह। ये हर आयत नहीं, वो एक आयत है। वो क्या है? वो फी ही आयत हदीस के अल्फाज, उसमें एक आयत है, यानी उन सूरतों में एक आयत है। वो आयत अगर पढ़ ले तो 1000 आयत पढ़ने का सवाब मिलेगा। समझ में आ गई हदीस? इस तरह है बोला आले इमरान की भी आखिरी आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सोते थे। आले इमरान की आखिरी आयत यानी आमन रसूल नहीं, इन फी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैल। हर रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयत पढ़ते थे। कितनी आयत पढ़ते थे? 10 आयत। सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयत ये पढ़ते थे। और एक सूरत और पढ़ते थे, वो है सूरह काफिरून, या अय्युहल काफिरून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जाते थे तो क्या पढ़ते थे? सूरह काफिरून पढ़ते थे। हाँ, क्यों, वजह क्या है, सूरह काफिरून क्यों पढ़ते थे? फरमाया जो आदमी फतुल बारी में बुखारी की शरह में लिखा है, जो आदमी सूरह काफिरून हर रात में पढ़कर सोता है, अगर उसका इंतकाल हो गया तो उसकी मौत ईमान पर आएगी, कुफर शिर्क पर नहीं आएगी, शिर्क पर नहीं आएगी। इसलिए कि इस आयत में शिर्क से बरात है। शिर्क तो हम नहीं करते, अगर मौत आ गई तो ईमान पर मौत। किस पर मौत होगी? ईमान पर। हजरत बुखारी शरीफ की हदीस है, दाऊद शरीफ की, तिर्मिज़ी शरीफ की। एक और सूरते हैं, हर रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते थे तो दोनों हथेलियों को मिलाते, ऐसे ऐसे मिलाते, इज पुट टुगेदर बोथ पाम्स एंड ऑलरेडी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊजु बिरब्बिल फलक, कुल अऊजु बिरब्बिन नास, फिर दम करते थे और फिर पूरे बदन के ऊपर इस तरीके से फेर देते थे, फिर पढ़ते थे कुल हु अल्लाहु अहद, कुल अऊजु बिरब्बिल फलक, कुल अऊजु बिरब्बिन नास, ब्लो करते थे। बुखारी शरीफ में नफस का लफ्ज है, नफस का मतलब जरा सा ठूक, नफस मीनिंग नॉट टू स्पिट सो मच, जस्ट फ्यू, नो दैट लाइक अ लिटिल लिटिल, जिस तरह फिर उसके बाद पूरे इस तरह यहां से आर्मपिट से नीचे पूरे बदन पर इस तरह फेर देना 3 मरतबा होता था। ये सही हदीस है बुखारी शरीफ, इसको कर लेना चाहिए सोते वक्त, ये अमल बहुत फायदा देता है। इसलिए कि जो मुसीबतें आसमान से आने वाली हो, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, कोई भी मुसीबत, आप सुबह हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, آسمانی مصیبتوں سے بھی حفاظت اور زمین کی مصیبت سے بچا. زمین کی مصیبت کیا ہے؟ جادو سے، بلیک میجک سے، کرتب سے، فیئر، خوف دہشت سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور ڈراؤنی خواب کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست ہے. فیئر فل ڈریم جو آتے ہیں نا، سنیک کے، کتے کے، گرنے کے، فنا فنا، ان تمام سے. ارے بھائی، اللہ کے نبی روزانہ کرتے تھے بستر پر بیٹھ کر قل ھو اللہ احد، فلق، ناس. ہم لوگ کیا کہتے؟ قل اللہ تین بار پڑھ لیتے. نہیں، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بلو اینڈ پاس اٹ آن. دین سیکنڈ ٹائم قل ھو اللہ احد، فلق، ناس، بلو، پاس اٹ آن آن دی ہول باڈی. پھر تین بار اس طریقے سے تین بار فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سحر اور جنات کو، جنات کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. بہت زبردست بات ہے. جہاں کہیں بھی تمہیں ایسا لگے کہ اس گھر میں ایسا لگتا ہے بہت جنات ہے، پڑھ کے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو جائے. یہ بہت زبردست بات ہے. تو ایک امدی، تو ایک لام سجدہ، اور تبارک الذی، رات میں سونے سے پہلے. نمبر دو کیا ہے کہ سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل. نمبر تین مسبحات، وہ صورتیں جس کے شروع میں سبحہ ہے، وہ چھ صورتیں. اس میں ایک آیت ہے جو ایک ہزار آیت کے برابر ہے، وہ لاسٹ تھری آیت سورہ حشر ہے، ہو اللہ الذی لا الہ سے لے کر اینٹر. اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل ھو اللہ احد، فلق اور ناس، اس کا طریقہ. اور اس کے بعد آیت الکرسی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نریٹڈ، حدیث بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز المال کی جلد نمبر 19 میں اس کو نقل کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے میرے پاس اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک خبیث جن، اے نبی، آپ کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کس کو کہہ رہے؟ اللہ کے نبی کو. کون کہہ رہے؟ جبرائیل علیہ السلام. ایک خبیث جن جو آپ کی ایزا کے لیے گھوم رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہا ہے. جب بھی آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی کو پڑھ لینا. کیا کہا؟ جب بھی بستر پر جائیں تو آیت الکرسی کو پڑھ لینا. یہ کون کہہ رہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اسی لیے آیت الکرسی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی مسلمان عاقل کو نہیں سمجھا، یعنی جو بھی انٹیلیجنٹ پرسن ہے، کلیور ہے، ہوشیار ہے، وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتا نہیں ہے. جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے وہ پاگل ہے. تو کیا یہی تو مطلب نکلا؟ عاقل ہوتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اور جو پاگل ہوتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر کون کہہ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. اسی لیے حسن حسین جو ہے، کتاب ہے دعا کی، حسن حسن حسین، اس کے اندر میں صفحہ 139 پر ایک روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، اس کی حفاظت کے لیے پوری رات ایک فرشتہ اس گھر میں آ جاتا ہے. اس گھر میں ایک فرشتہ پوری رات آ جاتا ہے، اور صبح تک شیطان کو اس گھر میں آنے دیتا نہیں ہے، نہ اس کے بستر پر، نہ اس کے گھر. سن رہی بات؟ اور عجیب بات آگے لکھی ہے اس حسین میں، جو بستر پر لیٹ کر اسے پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے، when you go to sleep recite first آیت الکرسی، تو اللہ تعالی اس کی اور اس کے چاروں طرف گھر والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. will protect you, your house, your neighbor's house, surround your house. اس کی بات یہ حسن حسین، پیج نمبر 139. मालूम होता है ये मजबूत हिसार है, किला, फोर्ट टू सेव योरसेल्फ, गुफा, आदमी अंदर चला जाए कोई कुछ गो या आए तो कुर्सी इज लाइक अ फोर्ट, किला है ना। और किला में तो बहुत मुश्किल है, पहले जमाने में भी सहाबा किराम किला के चारों तरफ खड़े हो, जब तक वो निकले नहीं कुछ नहीं कर सकते, अंदर में फोर्ट है। इसलिए सोते वक्त आयतुल कुर्सी का पढ़ना शैतान के वसवसों से बचने के लिए और शैतान के सारे हमलों से बचने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जबरदस्त मजबूत स्ट्रॉन्ग हिसार है, प्रोटेक्शन है, इससे बरकत नहीं है। इसीलिए आमतौर पर द शैतान ऑलवेज ट्रबल वुमेन्स, औरतों को बहुत ट्रबल करता रहता है, एंड बच्चों को, बड़े लोगों के पास कम आता है, उसको पता है कि ये डंडे मारेगा। औरतों के पास आमतौर पर चूंकि वो ज्यादा, वो दिन नापाकी के दिन भी होते हैं, पढ़ नहीं सकते, या इस तरीके से गफलत की टाइम भी होता है, और बच्चे आमतौर पर छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा परेशान करता है। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए ये आयत और टीम कुल है ना, टीम कुल और आयतुल कुर्सी जो है वो बहुत जबरदस्त मजबूत वेपन है, किला है। इसलिए हाय अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। हदीस में लिखा है इब्ने सुन्नी ने अपनी किताब में, हजरत अनस इसके रावी है, फरमाया जो शख्स रात में 40 आयतों की तिलावत कर ले, कितनी बार 40 तो आ जाती है ना, अलिफ लाम भी आ गई, सजदा तबारक भी आ गई जी, आयतुल कुर्सी भी आ गई और तीन खुल भी आ गई, ये तो 50-60 हो गई। तो अगर कोई आदमी 40 आयत पढ़ लेता है तो वो रात और दिन में उसको गाफिल नहीं लिखा जाएगा, गाफिल के माना निग्लेक्टफुल फ्रॉम द जिक्र ऑफ अल्लाह, उसको नहीं लिखा जाएगा। माशाल्लाह 40 आयत पढ़ ली, कभी उसको रोजाना पढ़ ले तो पूरी जिंदगी ये गाफिल नहीं होगा, गोया कि इसने जिक्र किया है। कितनी आयत? 40 आयत। और जो 100 आयत पढ़ेगा, 100 आयत पढ़ ले सोने से पहले, तो उसको कानितीन, कानितीन के माना इबादत गुजार, वर्शिपर्स, आबिद। अब देखो यासीन शरीफ की आयत 84 है करीबन, और ये सूरह तबारक अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ लिया रात में, हो गया काम। या सूरह वाकिया पढ़ लिया आपने, ये दोनों सूरतें पढ़ ली, हो गए। और वैसे ही कुरान की कोई आयत पढ़ ली 100 आयत, मेरी बात आ रही है, तो फिर वो गोया के पूरी रात दिन इबादत करने वाला है कानितीन में से। इसलिए हाँ, मुस्तदरक हाकिम की एक और रिवायत है, जो 10 आयतें भी पढ़ ले कहीं से पूरे कुरान से 10 आयतें, तो भी उसको गाफिलीन में से नहीं लिखा जाएगा। इज नॉट निग्लेक्टफुलनेस ऑफ जिक्र, इज नॉट स्टे अवे फ्रॉम जिक्र। माशाल्लाह 10 आयत तो हो जाती है बहुत, अब ईशा की नमाज में पढ़ लेते हैं। जो भाई सूरे हश्र की आखिरी आयत को नहीं भूलना चाहिए, उसकी एक हदीस सुन लो। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक्वेस्ट अ पर्सन, एक शख्स को वसीयत की, जब वो बिस्तर पर जाए, बिस्तर पर जाए तो सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़ ले। सूरह हश्र की वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु, जैसे मैंने बताया कि वो 1000 आयत के बराबर है, वो 3 आयत पढ़ ले, लास्ट 3 आयत ऑफ सूरह हश्र। अगर मौत आ जाए तो शहीद होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती होगा। किसमें से होगा? जन्नत वालों में से होगा, शहीद हो जाएगा, जन्नत ही होगा। ये इसीलिए दारमी की एक हदीस है कि हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो सूरह बकर की आयत पढ़ ले, कौन कौन सी? आयतुल कुर्सी, और उसके बाद की दो आयत आयतुल कुर्सी और उसके बाद की दो आयत रुकू तक रजीम, उसके बाद जो आयत है वो है और आखिर की तीन आयत लिल्लाहि मा फिस समावाती आमना रसूल ला युकल्लिफु, कितनी आयत हो गई आयतुल कुर्सी और दो आयत, तीन ये तीन उधर छह आयतें हैं, उसको पढ़ ले तो तीन दिन तक उसके घर में शैतान दाखिल नहीं होगा फॉर थ्री डेज। और जो एक रिवायत और इधर में की हाफिज कुरान मस्ट रिसाइट दिस, क्यों, जो रात को हजरत अब्दुल्ला की रिवायत है फरमाते हैं जो इन आयतों को सोते वक्त पढ़ ले वो कभी कुरान नहीं भूलेगा। धार्मिक की रिवायत है पेज नंबर 449 पर लिखा है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। नहीं बात आयतुल कुर्सी और उसके बाद की दो आयतें रुकू तक खाली दून तक और आखिरी तीन आयतें सूरह बकरा की फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सोने का इरादा करे, द पर्सन हू इज इंटेंडिंग टू स्लीप, दाहिने कर्म प्रहार रखे ऐसे अब मैं सो जाता हूं, कीप हिज हैंड ऑन द राइट चीक अंडरनीथ ऑफ राइट चीक, 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, तो कयामत के दिन अल्लाह उसे कहेगा ए मेरे बंदे दाई तरफ से जन्नत में चला जा, दाई तरफ से क्या जन्नत में चला जा। ये कंसुल उम्मान की हदीस है जिल्द नंबर 19 में इसको नकल किया है और उसकी हिफाजत इंसान और जिन्नात की मकर फरेब से भी होगी। एक और बात सुनो कंजुल उम्माल की हदीस और सुनो, हजरत अनस फरमाते हैं जब तुमने अपने बिस्तर पर सोने का इरादा किया और सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद एक बार पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा वन टाइम और सूरह इखलास, so he'll be protected from everything beside death, मौत के अलावा हर चीज से उसकी क्या होगी भाई हिफाजत होगी। सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद, इसलिए मैंने बतला दिया कि कभी भी सोने से पहले तीन कुल आयतुल कुर्सी और उसके बाद की दुआएं और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी तीन आयतें पढ़े बगैर नहीं सोना चाहिए। बात करेंगे इसीलिए माज इब्न जबर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि रात को जिक्र करता हो और पाक हो यानी वुजू के साथ हो, अगर उसकी रात में आंख खुल गई जिक्र करते करते सो गया वुजू के साथ, रात में उसकी आंख खुल गई उसने चाहे दुनिया का सवाल किया या आखिरत का अल्लाह उसको जरूर देंगे दुनिया का हो या आखिरत। ये इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में इस रिवायत को नकल फरमाया है पांचवीं जिल्द में, याद रखो सफा 235 पर इस हदीस को नकल किया है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने कि जो आदमी वजू कर ले सो जाए जिक्र करते करते पढ़ते 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 सो जाए तो रात में जब भी उठे आप तजुर्बा कर लेना, हमने तो बार बार तजुर्बा किया कोई भी परेशानी हो रात में आंख खुल गई हो गई पेशाब के लिए आंख खुल गई या फिर कोई ऐसी आंख खुल गई तो आप उस वक्त जरूर दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। इसीलिए इमाम तबरानी ने किताब दुआ में एक हदीस नकल की है, जाबिर रजी अल्लाह तआला इसके रावी है, फरमाते हैं जब आदमी बिस्तर पर आता है तो फरिश्ते और शैतान दोनों उस बंदे की तरफ दौड़ते हैं, फरिश्ता भी दौड़ता है और शैतान भी दौड़ता है। फरिश्ता कहता कि बंदा तेरा खातिमा ईमान पर हो, और शैतान कहता है तेरा खातिमा बुराई पर हो। दोनों कहते हैं आखिर सोने वाला अल्लाह का जिक्र करता हुआ सो जाता है तो फिर शैतान भाग जाता है, फरिश्ता उसकी पूरी रात क्या करता है निगरानी करता है, हिफाजत करता है। ये इमाम तबरानी ने किताब दुआ में इसको नकल फरमाया। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अमरुल यौम व लैला में एक रिवायत नकल की है, इमाम इब्ने सुन्नी ने भी इस रिवायत को नकल किया है अपनी किताब हदीस में, फरमाया जो अपने बिस्तर पर सोने आए और चौथा कलमा ये दुआ पर ले, सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। फरमाया जब रात में उठे दुआ कर ले उसकी दुआ कबूल हो जाती है। उसकी दुआ क्या हो जाती है? फतुल बारी में लिखा है जो आदमी पढ़ते पढ़ते सो जाए तो उसका बिस्तर उसकी मस्जिद बन जाता है। उसका बिस्तर क्या है? मस्जिद, कि वो नमाज जिक्र की हालत में होता है। अब एक और जिक्र है अबू सईद, अब ये सब कौन करता है? अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो बिस्तर पर जाते वक्त तीन मरतबा ये पढ़ ले, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कितनी बार पढ़ना? चाहे समंदर की झाग या दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर या दुनिया के रेत के जर्रों के बराबर या दुनिया के दिन और रात के बराबर उसके गुनाह अल्लाह क्या कर देता है? माफ कर देता है। कंजुर उम्मान के दिल से तीन बार। इसीलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं 12,000 मरतबा रोजाना इस्तिगफार करते थे। कितनी मरतबा? 12,000। उनके पास एक रस्सी थी ना, उसके ऊपर नॉट लगाए हुए थे, धागे, धागे के ऊपर क्या नॉट, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, उनके पास रस्सी थी लंबी और उसके ऊपर नॉट लगाए थे बड़े बड़े, तो उसको इस तरह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह 12,000 मरतबा, वो सोते नहीं थे जब तक के 12,000 मरतबा इस्तिगफार न करते। ऐसे भी लोग थे भाई, हम तो कुछ भी नहीं है, 100 बार भी नहीं करते। एक और वजीफा जिसको हम क्या कहते हैं भाई, तस्बीह फातिमी, तस्बीह फातिमा, वो क्या है भाई? 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। कितनी बार हो गया? 100 बार हो गया। फरमाया हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें ये सिखाया, मेरे घर में आकर सिखाया कि फातिमा मेरी बेटी ये पढ़ो, फातिमा तुम्हें गुलाम नहीं दूंगा ये पढ़ो। हजरत अली फरमाते हैं जंगे सिफीन में लड़ाई के दौरान में रात आ गई फिर भी हमने तस्बीह फातिमा को नहीं छोड़ा है। इसका मतलब वो पाबंदी से पढ़ते थे, हम भूल जाते हैं ना सोने से पहले भूल जाते, लेकिन कह रहे हमने जंग में भी नहीं छोड़ा। आखिरी रात में अगर याद आ गया तो ईशा के बाद, नहीं तो उठने से पहले ही पढ़ लिया, तहज्जुद में ही पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा हमने, भूले नहीं, कभी भी नहीं भूले। बहुत ताकीद है इसकी, तस्बीह फातिमा की। हमारी माई और बहने को तो खास पढ़नी चाहिए तस्बीह फातिमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को ये तस्बीह बतलाई। इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया जो आदमी इसको पाबंदी से पढ़ेगा उसको कभी थकन नहीं लगेगी, थकन टायर्ड, लेकिन शैतान पढ़ने नहीं देता, बड़े बगली सो जाते हैं। मुल्ला अलीकारी ने लिखा है ये अमल मुजर्रब है, तजुर्बा करके देख लो, इससे थकन दूर होगी और ताकत बदन में ज्यादा पैदा होगी, विटामिन डी और सी सब उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिश्कात की शरह लिखने वाले मुल्ला अलीकारी और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये अमल मुजर्रब है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि इन तस्बीह का सोते वक्त पढ़ना थकन को दूर करता है और कुव्वत को ज्यादा करने का सबब है, ताकत को। और आखिरत में खादिम से ज्यादा बेहतर है, यानी कयामत में ये तस्बीह इतनी काम आएगी तस्बीह फातिमी कि दुनिया में आपका काम करने वाला खादिम भी वो काम नहीं आएगा, इतना काम नहीं करेगा जितनी तस्बीह काम करेगी। ये जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं जी। अल्लाह तो यहां पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार। एक और बात है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारा रब हर रात जबकि एक तिहाई रात बाकी रह जाती है, यानी तहज्जुद का टाइम समझो फजर के 1 घंटे पहले, आसमान दुनिया पर अपने नुजूल फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ करूं, कौन कबूल करूं, कौन है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको दे दूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूं। इसीलिए जब भी आंख खुले ट्राई करना चाहिए कि या तो तहज्जुद पढ़ ले, नहीं तो कम से कम तीसरा चौथा कलमा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से क्या कर ले भाई, दुआ कर ले। इसलिए और भी बहुत सारी दुआएं हैं जिसको दुआएं नौम कहते हैं, सोने की दुआ, सोने की दुआ। लेकिन सबसे अच्छी दुआ जो मैंने बतलाई और वो क्या है, चौथा कलमा और तीसरा कलमा और तस्बीह फातिमी जो है वही तीसरा कलमा है, इसको पढ़े बगैर और आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 आयतुल सूरह बकरा उसको पढ़े बगैर नहीं सोना चाहिए। और जब सुबह उठे तो उस वक्त भी अल्लाह से क्या है, दुआ पढ़कर उठना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना माता। अगर रात में कोई ख्वाब आ गया बुरा ख्वाब, अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह की तरफ से उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बुरा ख्वाब आए तो 3 बार क्या करे, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब तुम में से कोई बुरे ख्वाब देखे तो लेफ्ट साइड में 3 मरतबा कर ले, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं, इस तरह कर ले और 3 बार अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़े और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़े। कितनी बार पढ़े? 3 बार पढ़ ले। तो ये है, अगर बुरा ख्वाब आए तो फिर उसके बाद उसको इफेक्ट नहीं करेगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। फिर कभी जिंदगी बाकी रहेगी तो जरूर हम बयान करेंगे इस बात को कि ख्वाब की ताबीर, कौन सा ख्वाब देखा जाता है तो क्या होता है, ख्वाब की ताबीर क्या है, और सच्चा ख्वाब क्या है, झूठा ख्वाब क्या है वगैरह। अगर कोई दूध देखे ख्वाब में कि दूध पी रहा है तो क्या ताबीर है, कोई फूंक मार रहा है क्या ताबीर है, कोई शहद खा रहा है क्या ताबीर है, सफेद लिबास है क्या ताबीर है, बहुत सारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं और बहुत सारी चीजें ख्वाब के मुतालिक है। तो इंशाअल्लाह उसको बाद में बयान करेंगे। हर चीज को सीखना है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हय्युन या कय्यूम, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه اهله. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ عفو و عافیت کا اور درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، اے میرے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہم سب کی ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے آنے والے کے قدم کو نجات کا، رحمت کا، مغفرت کا، عفو کا ذریعہ بنا، یا اکرم الاکرمین ہم سب کو اس تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہماری زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے والوں میں سے بنا، اے اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں، اے اللہ روحانی اعتبار سے طاقت نصیب فرما، ایمان کو مضبوط بنا، ایمان کو مضبوط بنا، مضبوط ایمان نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اے اللہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مدت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری روزی میں بے انتہا برکات نصیب فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین، غزہ، ویسٹ بینک اور سوڈان کے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، سب کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، یا اللہ، یا اللہ ان آمین والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم اجمعین، رحمتہ اللہ.